الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں. عشر مبشرہ مینی دوست 10 صحابہ جن کو دنیا میں، وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن زید، زبیر ابن العوام، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ ہیں بڑے اونچے درجے کے صحابہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت، دنیا میں جنت کی بشارت. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں. بہت چھوٹی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے اور اپنے والدین سے بہت محبت کرتے تھے. جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، جب ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا، تو ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، تم نے از اے نیو ریلیجن یو ایکسیپٹڈ، اور تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. اینڈ یو لیفٹ یور فور فادرز ریلیجن. والدہ نے دھمکی دی کہ اگر تم نے اس نئے ریلیجن کو نہیں چھوڑا تو میں آج سے کھانا پینا چھوڑ دوں گی، آج سے I am not going to eat, I'm not going to drink from today. और मैं इसी भूख और प्यास से मर जाऊंगी। लोग कहेंगे तुमको कि तुमने मां को कत्ल कर दिया। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अनु इस्लाम में बहुत पक्के हो गए थे। हिज इस्लाम एंड दीन ईमान वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बड़ी मोहब्बत थी अपनी मां से। देखो मां से कितनी मोहब्बत है, लेकिन मां अपने बेटे को शिर्क करने की, इस्लाम से निकलने का हुक्म कर रही है, तो मां की बात को नहीं माना, अल्लाह के हुक्म को माना। अल्लाह को सार इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अनु ने अपनी मां को समझाया कि मेरी अम्मी ऐसा मत करो, अगर तुम न खाओगी न पियोगी तो ये न समझना कि मैं ईमान को छोड़ दूंगा। उनकी वालिदा ने चंद दिन खाना नहीं खाया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कमजोर हो गए, शी बिकम वेरी वेरी वीक। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला ने अपनी मां को देखा कि बड़ी कमजोर हो गई, तो अपनी मां से एक सेंटेंस कहा, एक जुमला कहा, लौकान लके मियात नफ्स, ए मां सुन ले, ओ मेरी मां सुन ले, अगर तू एक मां नहीं अगर सौ मां हो, लौकान लके मियात नफ्स, सौ मां सौ जान हो मेरी मां की, एक जान नहीं सौ जान हो। फिर फखरजत नफसन नफसन, एक एक जान निकलती चली जाए, ये तो एक ही जान है ना हर एक के अंदर में, तो एक ही सोल है तो ऐसे निकल जाता है, एक निकले फिर दूसरी निकले फिर तीसरी निकले, सो जान निकल जाए। मां तरक तो दीनी, तब भी मैं मेरे दीन को छोड़ने वाला नहीं, मां तरक तो दीनी, इंशी ते फकुली औ लातू टाकुली, तुम चाहो तो खाओ, तुम चाहो तो न खाओ, तुम चाहो तो पियो, तुम चाहो तो ना पियो, लेकिन मैं मेरे नबी को छोड़ने वाला नहीं। ये है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नासि अजमईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक के तुम्हारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपनी वालिदा और वालिद साहब और अपने माँ बाप भाई बहन और दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा हो जाए, वहां तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता। आज तो मां और बाप की वजह से इंसान नमाज भी छोड़ देता है, रोजा भी छोड़ देता है, गुनाह भी कर लेता है, शिर्क भी कर लेता है, सब कुछ। अल्लाह हु अकबर। ये बात सीर एलामुन नुबला में सीरत की किताब में लिखा है, इनके बारे में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मन रमा बिसहमिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले दुश्मन पर अगर किसी ने तीर चलाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो मेरा साद इब्न अबी वक्कास है सबसे पहले। क्यों? हिजरत के पहले साल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबैदा इब्न हारिस रजी अल्लाह ताला अनहु को 60 मुहाजिरीन सहाबा की एक जमात के साथ अबू सुफियान के काफले को रोकने के लिए भेजा था बदर से पहले, तो उस जमात में साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अनु हाजिर थे, सबसे पहले उन्होंने तीर चलाया। यह है साद इब्न अबी वक्कास। मुसलमानों की जमात के सामने शील और ढाल बनकर खड़े हो गए ताकि किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, मारते रहे दुश्मन को। 20 तीर मारे उन्हें, अब निकालते रहे, मारते रहे, निकालते रहे। हर एक तीर से कोई ना कोई मरा है, या तो उनका जानवर मर गया जिस पर वो आए थे, या वो खुद आदमी मर गया दुश्मन। ये बुखारी शरीफ की शरह में लिखा है। ओहद के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिदाक अबी व उम्मी, साथ मेरे मां बाप तुझ पर कुर्बान। नबी फरमाते क्या, कौन कुर्बान? नबी कहते मेरे मां बाप तुम पर कुर्बान। अल्लाह अकबर, तुम तीर मारो, तुम लगाओ। गज़वे उहद में सबसे ज्यादा तीर अंदाज करने वाले ये थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि मेरे मां बाप तुम पर कुर्बान, कितनी बड़ी बात है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुर्बानियों को देखकर, साद इब्न अबी वक्कास की कुर्बानी को देखकर, चूंकि इस हदीस के रावी वही है इसलिए मैंने थोड़ा मैंने बता दूं, दो दुआएं दी उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। साद इब्न अबी वक्कास को दो दुआएं दी उनकी कुर्बानी। एक तो क्या है, अल्लाहुम्मा सद्दिद रमयतहु, ए अल्लाह उनकी तीर अंदाजी में उनको महारत अता फरमा, जब भी तीर मारे दुश्मन को लगे, एक भी खाली न जाए। वो कहते गोली मारते खाली नहीं जानी चाहिए, ऐसे दुआ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा अजीब दावत हो, जब भी दुआ करे इनकी दुआ कबूल हो जाए। दो दुआएं साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, इसीलिए साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा मुस्तजाब दावत कहते, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल हो जाती थी। बुखारी शरीफ में एक वाक्या लिखा है, बुखारी शरीफ कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब उनको कूफा का गवर्नर बनाया हजरत उमर, तो सम पीपल फ्रॉम द कूफा दे कंप्लेन अबाउट साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्नहु ला युहसिनु सला युसल्ली, हजरत उमर इनको नमाज पढ़ाते नहीं आता है, ही डोंट नो हाउ टू परफॉर्म सलाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मैसेज भेजा, साथ मदीना हो, कूफा से मदीना हो, तो पूछा तुम्हारी तरफ से कंप्लेन आई है, द पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट यू। उन्होंने साफ वजाहत कर दी कि मैं उनको नबी, चूंकि तीसरे नंबर पर इस्लाम लाए थे ना, तो बहुत पुराने साबित थे, नंबर थ्री है उनका इस्लाम लाने में, और अल्लाह के नबी की दुआएं उनके साथ है, तो कितना साल से वो हजरत उमर का जमाना तो बहुत बात का है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, अबू बकर सिद्दीक का जमाना, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत का जमाना, तो मैं उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ाता हूं, पहली दो रकात में सुकून और इत्मीनान से, और दूसरी दो रकात में आहिस्ते यानी खाली सूरह फातिहा पढ़ता हूं। तो हजरत उमर ने फरमाया, मेरा भी तो यही गुमान था कि तुम तो इतने बड़े साहबी हो तो बराबर नमाज पढ़ाते होंगे, फिर ये कंप्लेन क्यों करते हैं। तो हजरत उमर ने उनके साथ एक और आदमी को भेजाओ, कूफा जाओ इनके साथ, और कूफा वालों से हजरत और लोगों से पूछो कि साद इब्न अबी वक्कास तुम्हारे अंदर कैसा है। बाज मरतबा कुछ जेलस पीपल कंप्लेन करते हैं, जाकर ट्रस्टी को कह देते हैं, हजरत उमर ट्रस्टी थे, उनको कह के बाज होते हैं ऐसे, भाई कंप्लेन कर दी इमाम साहब की, तो लेकिन फाइंड आउट करो। और ट्रस्टी ने फाइंड आउट किया सारे मुसल्लियों से, हजरत उमर ने आदमी भेजा, जाओ कूफा वालों से बात करो सब लोगों से, और जानो कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु की हिकमत। तो ये आदमी गए और हर मस्जिद में जाकर तहकीक की, सबसे पूछा, कहा एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिन्होंने इनकी तारीफ न की हो, सबने तारीफ कर दी। लेकिन जब वो दूसरी एक मस्जिद थी जिसको कहते हैं कबीले बनु अबस की मस्जिद थी, वहां पर वो आदमी गया तो उस मस्जिद में एक आदमी बुड्ढा था, उसका नाम अबू सादा था, अबू सादा उसका नाम था। ये बुखारी शरीफ की हदीस नकल कर रहा हूं। तो उस आदमी ने हजरत उसकी उसको पूछा कि हजरत साद के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। उसने तीन शिकायत की, कहीं किसी ने नहीं की, इसने तीन शिकायत की हजरत साद रजी अल्लाह तआला के बारे में। पहली शिकायत क्या थी? कान ला यसीरु बिसरिया, वो दूसरे को अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए भेजता है लेकिन खुद नहीं जाता, सबको तबलीग में भेजता है लेकिन खुद नहीं जाता, समझे? एक शिकायत तो ये की। दूसरी शिकायत की, वला यक्सिमु बिसबिया, वो माली गनीमत जो आता है ना तो बराबर उसको तकसीम शेयरिंग नहीं करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम देता है। ये तीसरी, वला यादिलु बिल कजिया, बुखारी शरीफ में है कि जब लोगों के फैसले करता है, मुकदमे कोर्ट केस होते हैं ना, तो उसमें बराबर अदल इंसाफ से फैसला नहीं करता। ये तीन शिकायत कर दी। तो जाहिर बात है कि उसने गोया के हजरत साद इब्न अबी वक्कास की बहादुरी पर अक्यूज किया उसने। ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, नबी सासम यूज टू टेलिंग हिम, मेरे मां बाप तुम पर कुर्बान हो, लगाओ तीर उनकी बहादुरी पर। तो भी क्या है कि अल्लाह के रास्ते में नहीं जाते, तो ये मतलब हुआ कि ये तो बहादुर नहीं है, घर बैठे रहते हैं। और उनकी इफ्फत और पागदामनी पर भी डब्बा लगा दिया, क्यों? कि ये माने गनीमत चोरी कर लेता है, झूठी झूठा इल्जाम डाल दिया, इंसाफ नहीं करता। और उनकी दिनदारी पर भी डब्बा लगा दिया, क्यों? इसलिए कि ये बराबर फैसला नहीं करता, इंसाफ से काम नहीं लेता, तो उनकी दिनदारी पर भी अक्यूज किया और उनके उनके क्या कह रहे इज्जत पर भी हमला किया, और इसी तरीके से उनके अदल इंसाफ पर भी, उनकी बहादुरी पर भी हमला किया। उसने हजरत साद रजी अल्लाह तआला के खिलाफ थ्री अक्यूजेशन कोर्ट में हजरत उमर के सामने जमा कराए, थ्री डिफरेंट केसेस, तीन फाइल खोल दी केस की, ये भी और ये भी और ये भी, तीन केस, एक केस नहीं तीन केस खोल दी। तो उस पर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला को आया गुस्सा और कसम खा ली, और क्या कहा? अल्लाह की कसम, अगर ये अबू सादा झूठा है जो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, रियाकारी कर रहा है, अगर ये झूठा है रियाकारी कर रहा है, तो ये अल्लाह उसको भी तीन मुसीबत में मुब्तला कर देना, तीन बड़ी बड़ी। ये बुखारी शरीफ के लिए देखो, हजरत साद के बारे में दुआ की थी अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह इनकी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। अब ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रा, इस बुड्ढे को लंबी उम्र देना, मैं और आप तो खुश हो जाएंगे यार, लंबी उम्र मिलेगी ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं करा किसी को अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, बल्कि यूं कहे अल्लाह तुम्हें आफियत के साथ लंबी उम्र दे। इसके साथ आप लंबी उम्र हो गई, दीन का काम नहीं कर सका, बिस्तर में पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, परेशान। इसलिए एक दुआ बद्दुआ ये की, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रा, इसकी उम्र को लंबी कर दे। फिर कहा वातिल फकरा, और जैसे जैसे उम्र लंबी हो उसकी फकीरी को, मोहताजगी को बढ़ा दे, यानी खूब फकीर हो जाए। वातिल फकरा, और उसकी फकीरी गरीबी को बढ़ा दे, लंबा कर दे। वहीरदहू बिल फितन, और ऐसा जमाना इसके ऊपर आए कि वो उन फितनों का शिकार बन जाए, वो दुनिया के फितनों में, ट्रायल में, मुसीबत में पड़ जाए। अगर ये झूठा है, इसने मुझ पर तीन इल्जाम लगाए, इस पर भी इस तरह। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अनु की तीन झूठी शिकायत की थी, तो एक तो बहादुरी थी कि गोया बहादुर नहीं है, जाता नहीं अल्लाह के रास्ते, और एक उनके माल के बारे में चोरी कर लेता है, और एक उनकी दिलदारी के बारे में इज्जत पर हमला किया। तो हजरत साद ने भी तीन बद्दुआएं दी, एक उसकी जात के बारे में कि उसकी उम्र लंबी हो, एक उसके माल के बारे में कि फकीरी हो, और एक है दिनदारी के बारे में कि दिनदार न रहे फितने में मुब्तला हो जाए। जैसी उसने इल्जाम लगाए वैसी बद्दुआ कर दी और यह शर्त लगाई अगर यह झूठा है तो। हजरत साद रजी अल्लाह तआला चूंकि मुस्तजाब दावा थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ बद्दुआ कबूल कर ली। उस बुड्ढे की इतनी लंबी उम्र हुई, इतनी लंबी उम्र हुई कि ये बहु जो है ना आईब्रोज जिसको कहते हैं ऊपर के, क्या बोलते हैं इसको, आईब्रोज, इतने लंबे हो गए, इतने लंबे कि वो नीचे गाल तक लटक गए। ये सर बाल आंखों के ऊपर के जो बाल है ना इतने लंबे हो गए कि वो आंख आंख बंद हो जाती है, ऐसे बाल उठा के देखना पड़ता था बहुत इतने। नंबर दो, औरतों के फितने में ऐसा डाला कि चलता था इस बुढ़ापे में, बुढ़ापे में कोई भी औरत जवान बूढ़ी होती उसको छेड़छाड़ करता था, ये फितना में पड़ गया। ये लोग उसको पूछते थे तो जवाब देता था कि असाबत ने दावत साथ, मुझे साद इब्ने अबी वक्कास की बद्दुआ लग गई है, ये खुद कहता था। और मुस्नद अबू याला की रिवायत में है जब उससे पूछा जाता आपकी क्या हालत है, वो जवाब में कहता है कबीर उन फकीर उन मफ्तून, असाबत ने दावत साथ, बुद्धा हो गया, फकीर हो गया, फितने में पड़ गया, साद की बद्दुआ मुझे लग गई। हजरत साद रजी अल्लाह तआला का इंतकाल तो 55 में हो गया लेकिन ये तो लंबी उम्र पाली से बुढ़े। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला ने का वाकिया इस हदीस में नकल किया है जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, ये इमाम नववी ने इसको नकल की रियाजुस सालिहीन में। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला ने हज्जतुल विदा के साल में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पढ़ने के लिए गए ना तो उनके साथ थे, बहुत ज्यादा दर्द लग गया, दर्द मीन पेन, ही हैड लॉट्स ऑफ पेन इन हिज बॉडी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए, केम टू विजिट मी। हज्जतुल वदा सन 10 हिजरी में हुआ है, 10 ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट हज था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह हम सबको ले जाए, बार बार ले जाए। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे किराम मौजूद थे, हजरत साद रजी अल्लाह तआला भी उस सफर में मौजूद थे मक्का मुकर्रमा में, लेकिन बीमार हो गए मक्का मुकर्रमा, ऐसे बीमार हो गए कि वो ऐसा समझ रहे थे कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा इसी बीमारी में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उनको विजिट के लिए चले गए। यह है इयादत, कोई आदमी बीमार हो तो उसके इयादत के लिए जाना चाहिए या कम से कम फोन से खबर पूछनी चाहिए या कम से कम नंबर तीन उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इयादत कहते हैं बीमार की मुलाकात को, बीमार आदमी की खैरियत मालूम करने के लिए कोई आदमी उस बीमार की मुलाकात करे तो उसको कहते हैं अरबी में इयादत। ये इयादत करना सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीमार की खबर पूछने की बड़ी फजीलतें बयान की है। अभी तो जमाना ऐसा आ गया कोई कोई मां और बाप की भी इयादत नहीं करता है। वो आज ही मैं पढ़ रहा था, एक मां ने कहा मेरे चार बच्चे हैं और चारों बच्चों को मैं एक रूम में आराम सुलाती रही और खिलाती रही पिलाती रही, अब चारों की शादी हो गई, चारों के रूम में मुझ मां की जगह नहीं है, मेरे रूम में चारों की जगह थी लेकिन उनमें किसी के घर में मेरी जगह नहीं है, कोई बेटा मां को रखने के लिए तैयार नहीं है। सही कह रहा हूं, जमाना ऐसा है मां और बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं। सुबह उठे दोपहर में उठे चलो समझा कि तू अलग रह रहा है लेकिन सुबह शाम मां को फोन कर तो एक फोन करके उनको हंसाए, हज का सवाब ले ले, उमरे का सवाब ले ले। वो 10 साल तक पैसे जमा करता है हज में जाने के लिए और यहां मुफ्त में सवाब मिलता है, मां को मिलने का, मां से मोहब्बत रखने का, बाप को मिलने का, बाप से मोहब्बत रखने का। और वो ऐसा है कि जो हज मकबूल है حج مبرور ہے جس کی قبولیت میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. حدیث میں آتا ہے رب العزت قیامت کے دن بندے سے کہے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ کیا کہے گا؟ میں بیمار تھا تو میری خبر لینے کے لیے نہیں آیا. بندہ کہے گا میرے رب آپ تو رب العالمین ہیں, آپ تو ساری دنیا کے رب ہیں, آپ تو سارے جہانوں کے رب ہیں, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں, کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ اللہ کو وہاں پا لیتا, میں وہاں موجود تھا. گویا تو میری عیادت کے لیے آیا ہے, اس کی نہیں میری, یعنی اللہ کی عیادت کے لیے آیا ہے. اور ماں باپ کی, بھائی کی, بڑے بھائی کی کہاں عزت ہے لوگوں میں؟ بھائیوں کی عزت نہیں, بہنوں کی عزت نہیں, اب تو رشتہ داری کا تکبر, حسد, بغض اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا بڑھ گیا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ نہیں سکتا, بہن بہن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی کہ تو کسی بیمار کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا. اچھی بات ہے نا, اللہ وہاں تھا اور اللہ اس کو قیامت میں کہے گا میں تھا وہاں تو آیا نہیں, تو اللہ ہی مل جائے. اس لیے جب میرے گھر سے میں نکلوں گاڑی میں بیٹھا کسی کی خبر لینے کے لیے تو میں جتنے قدم چلتا ہوں یہ سارے قدم جنت میں چل رہا ہوں. میں کہاں چل رہا ہوں؟ جنت میں چل رہا ہوں. اور صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. صحیح حدیث ہے. آج تو کتنا آسان ہے, چلو نہیں جا سکتے فون سے پوچھو, صبح پوچھ لو, دوپہر میں پوچھ لو, شام پوچھ لو, اب تو کتنا آسان ہے. چلے گئے تو نور نلا نور ہے, نہ جا سکے پریشانی ہے کچھ ہے تو کم سے کم فون سے تو خبر لو, دل خوش ہو جائے گا اور ان کی دعائیں لگ جائے گی. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے. میری بات نہیں سمجھ رہی؟ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے. فرشتہ تمہارے دعا کرے اور بیمار دعا کرے, دونوں کی دعا برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی مومن بندہ کسی مومن بندے کی خبر پوچھنے کے لیے صبح میں جاتا ہے, جو میں نے بھی سنا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, شام میں جاتا ہے صبح تک دعا کرتا ہے, رحمت کی دعا, اللہ رحمت اتار اس پر, رحمت اتار, اور ایک ایک منٹ دعا کرتے ہیں صبح سے شام تک 12 گھنٹے کی دعا فرشتے, اور وہ بھی 70,000. یہ تو ترمذی شریف کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں رہا. بی بی سی اگر کوئی بات کہہ دے تو ہم اس پر یقین کر لیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی واٹس ایپ پر مجھے میسج بھیج دے ہم یقین کر لیں گے, اور سب سے زیادہ جھوٹا سیئر ہے کہہ دے تو وہ بھی اس سے یقین کر لیں گے. لیکن میرا نبی اوپر اللہ سے لیتا ہے, بندے کو دیتا ہے, پھر بھی اس پر اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی اپنی زبان نہیں ہلاتا جب تک کہ میں ان کو نہیں کہتا. صحابی آئے تھے نا تو لکھ رہے تھے ساری حدیث, کچھ دن چھوڑ دی, فرمایا کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ غالباً یہی سال ابن وقاص نے لگا تھے, یہی تھے لکھ رہے تھے, کیوں نہیں لکھ رہے؟ بات صحابہ نے کہا کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے میں ہوتے ہیں تو بات جب بیان کر دیں تو ہم لکھ لیں گے, تو صحابہ نے مجھے منع کیا کبھی آپ تو غصے میں ہوتے ہیں. آپ نے زبان پکڑی ایسی, اللہ کے رسول ایسی زبان پکڑی, فرمایا یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی, وہی بولے گی جو میرا اللہ مجھے کہے گا. زبان پر لکھ چاہے میں غصے میں ہوں چاہے نہیں, یہ ہمیں یقین نہیں رہا اللہ کے نبی کی بات پر. صحیح صحیح حدیث ہی تو مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. جنت میں یہ باغ، جنت کے باغ میں جا رہا ہے وہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھو، حج میں جا رہے ہیں سب پورا گروپ، لیکن ایک بیمار ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص نہیں جا سکے، مکہ میں ہے مینا میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ امام الانبیاء ہے، میں اور آپ جیسے نارمل آدمی نہیں ہے، ہم تو پتھر جیسے ہیں، وہ تو پرلز ہے. ایک بزرگ نے جمعہ میں بیان میں کہا، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت فی الحجر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہماری طرح ہے، لیکن ہماری طرح نہیں، کہہ رہے وہ ہم پتھر ہے، وہ پرل ہے، یاقوت ہے، وہ یاقوت ہے. رات کو جب سوئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، تم نے آج میری ایسی تعریف کی ہے کہ اللہ نے تمہارے بھی اور تمہارے مجمع میں جمعہ میں بیان سننے والے جتنے تھے سب کی اللہ نے مغفرت کر دی. امام الانبیاء ہے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. اب سعد ابن وقاص کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. تو میں نے اس وقت عرض کیا، اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہے، دیکھ رہے ہیں. حضرت سعد نے اپنی اس تکلیف کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیا، بہت درد ہے مجھے، بہت درد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بیمار آدمی اپنی تکلیف کو بیان کرنا چاہے کسی کے سامنے، عیادت کرنے والے کے سامنے، تو کر سکتا ہے. یہ مسئلہ نکلا نا یہاں سے، سعد ابن وقاص بیمار ہے، اپنی بیماری کی تکلیف کی شکایت کی کس کے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں ہاسپٹل میں آئے، کیا ہوا؟ مجھے فنا پرابلم ہے، فنا پرابلم ہے، بہت درد ہے، فنا ہے، کہہ سکتے ہیں، یہ شکایت نہیں اللہ کی. لیکن یہ شکایت ہم جو کریں گے وہ دوا یا دعا کے لیے کرنا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو دوا کے لیے، کوئی ملنے کے لیے آئے تو دعا کے لیے، بھائی دعا کرنا مجھے یہ تکلیف ہے، ایسے نہیں کہ شکایت کرتے رہے. یا تو دوا مقصود ہو کہ تاکہ ڈاکٹر سمجھے بھائی کیا ہوا، تو بتائیں اپنی شکایتوں کو کہ ایسا پرابلم ہے تو دوا دے گا وہ، اور اگر نہیں بتایا، نہیں میں تو اللہ کی شکایت کر رہا ہوں، تو ڈاکٹر کو کیسے، وہ تو اللہ نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا. اور کوئی آدمی آ جائے ان کے سامنے دعا کے لیے کہو کہ میرا یہ پریشانی ہے، یہ مسائل ہے جو حدیث سے نکلتے ہیں، یہ مسائل. چونکہ بیمار آدمی دعا کا زیادہ محتاج ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب کسی بیمار کی خبر پوچھنے کے لیے جاؤ تو اس کے پاس سات مرتبہ یہ دعا پڑھو. اتنی مرتبہ بھائی؟ سات مرتبہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میری مائیں اور بہنیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. میں ابھی سفر سے آیا ہوں، غسل کر کے سیدھا مسجد آیا میں ساؤتھ افریقہ سے، لیکن میں نے یہ بیان نہیں، میں نے کہا پروگرام کرنا ہے، سیدھا وہاں سے اتر کیا، دو روٹی ایک روٹی کھائے وہ مسجد میں آیا گیا. لیکن بیان کرنا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں، میں نے کہا بسم اللہ، کیونکہ اللہ بات کہلوانا چاہتا ہے. تو آپ لوگ بھی محبت سے آتے ہیں تو ہم اپنی محبت کیوں نہ دکھائیں. یہ چیز ہے، حالانکہ کتنا لمبا سفر ہے، کل 12 بجے سے نکلا، آج 10:30 بجے 11 بجے پہنچا، 10:30 بجے. تو یہ ہے، جب بھی بیمار کے پاس جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا ضرور کرو. ہم کو یہ دعا ہی یاد نہیں ہے، صحیح دعا ہے یہ، دعا ترمذی شریف میں لکھی ہے. کیا ہے دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر مرد ہے تو، عورت ہے تو، ان یشفیک، اللہ تجھے شفا دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ. لیکن پڑھنے کے بعد پھونک نہیں مارنی، اس دعا میں پھونک نہیں مارنی ہے. ہمارے حضرت استاد تشریف لائے تھے یہاں، انہوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد بس کافی ہے، پھونک نہیں مارنی ہے. بعض دعا میں پھونک مار، لیکن یہاں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، بہت لکوا ہو گیا تھا، اس کو جب بھی آتے تھے ساؤتھ افریقہ تو آپ بیٹھتے تھے اور ایک آپ کے خادم یہ دعا پڑھاتے تھے سب کو، अस्अलुल्लाह अलअज़ीम, सब साथ में पढ़ते थे हजरत के लिए दुआ करते हैं। ये तो जब भी किसी बीमार के पास जाओ ये दुआ जरूर याद करना, अगर अपने लिए करनी है तो अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, मुझे शिफा दे, या अन यशफी औलादी, या मेरी बेटी को शिफा दे, या मेरी औलाद को शिफा दे। ये तो अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम, यहां तक भी याद कर ले काफी है, आगे फिर उर्दू में बोल दे या अपनी इंग्लिश में बोल दे कि मुझे शिफा दे या आपको शिफा दे। ये अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, या अन यशफियके, या अन यशफियनी, या अन यशफियना, हम सबको शिफा दे। ये है जब भी कभी, और एक रिवायत में है हदीस में तिर्मिज़ी शरीफ में, जब कभी तुम किसी की यादत के लिए जाओ तो उनको तसल्ली दो, डोंट वरी, विल कम होम नाउ, लंबी उम्र की उम्मीद दिलाओ, भाई तू जिएगा भी। और कौन सा जुमला कहो उनको, अल्लाह के नबी कह रहे लाबासतुहूर इंशाअल्लाह, लाबासतुहूर इंशाअल्लाह, लाबासतुहूर, और ये उम्मीद के जुमले, इंशाअल्लाह तुम अच्छा जियोगे, जल्दी अच्छा हो जाओगे, यूं कहो तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे, तो उनको तसल्ली मिलती है ना। और नौ बेचारा परेशान होता मर जाऊंगा मैं, तुम नहीं, यह भी तुम इंशाअल्लाह जल्दी घर आ जाओगे, तो उनके दिल को सुकून मिलेगा। ये हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए, बाज मरतबा नाराजगी का इजहार करने के लिए, अगर कोई कंप्लेन करे ये कैसे मेरे, मुझे बीमारी लग गई, ये कैसे लग गई, ये कैसे हो गया मेरे लिए, एक आदमी कहता है मैं ही मिला, मुझे ही कैंसर हो गया और किसी को नहीं हुआ, मुझे ही टीबी लग गई, मुझे ही हो गया, अल्लाह ने मुझे ये बीमारी क्यों दे दी, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम ईमान वाले हैं और ईमान वाले ऐसे जुमले बोलते नहीं है, हर वक्त अल्लाह के फैसले पर क्या है राजी। लेकिन दवा के लिए और दुआ के लिए अपनी बीमारी की शिकायत की तो उसके लिए क्या है, जायज है, नाराजगी के लिए नहीं कि मुझे क्यों लग गई। इसलिए ईमान मुजमल हमने पढ़ा है, ईमान मुफस्सल हमने पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा, वल कद्री खैरी व शर्री, अच्छा भी अल्लाह की तरफ से, बुरा भी अल्लाह की तरफ से, मिन अल्लाह ताला, अल्लाह की तरफ से। तो सब ये हमारा, उस पर हमारा ईमान है ना, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पर, जो भी बीमारी दे, जो भी प्रॉब्लम हो, सब अल्लाह की तरफ से है। लेकिन यह भी बात याद रखो, बीमार को अपनी बीमारी छुपाना नहीं चाहिए, बहुत से लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं, किसी को कहियो मत, मेरा नाम लेके दुआ मत करियो कि मुझे ऐसी बीमारी है, तो नहीं बात, छुपाना नहीं चाहिए, यह बहुत गलत बात है कि कोई आदमी किसी बीमार की खबर पूछने के लिए आदमी चला गया ब्रेडफोर्ड हॉस्पिटल में, एनएचएस में, अब उस बीमार को घर वाले मिलने ही देते नहीं, मिलने मिल सकते हैं, क्योंकि अगर मिलने आएगा तो पता चल जाएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, आप अंदर वार्ड में नहीं जा सकते, मिलने बहुत सब मिलने भी नहीं देते। यहां एक मर्तबा गया तो मेरे पास वो एनएचएस का वो बैच था चपलंसी का, चला गया, चूंकि मैं सब की खबर लेने चला जाता था, तो कहते ना यहां नहीं जा सकते आप, ठीक है नहीं जाऊंगा, मैं कहता हम तो दुआ देने के लिए जाते हैं, मुझे क्या लेना देना है, मैं बीमारी है तो दुआ देंगे। लेकिन तो वो पहले जब मैं शुरू शुरू में आया तब ये बात ऐसे भी होते हैं, लेकिन बात बीमारी ऐसे जिसमें जाना नहीं चाहिए, बात बीमारी ऐसी है जिसमें जाना नहीं चाहिए, वो एक बीमारी कौन सी है, खुजलाना, क्या बोलते हैं उसको, इचिंग, तो उसको अभी कभी कपड़े हटाना पड़ता है इचिंग करने के लिए, उस वक्त तुम जाओगे तो बेचारे को परेशानी होगी, वो स्क्रेचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, और आप वहां खड़े हैं, वो कपड़ा नहीं हटा सकता, ऐसी बीमारी में नहीं जा, बाज बीमारी में नहीं जाना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज बताई है, फरमाया कि बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, नंबर दो। दूसरी बात यह भी है किसी को बीमारी का पता चल जाए तो कितनी दुआएं मिलेगी, दुआ करेंगे ना, छुपाना नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। सारी नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के रसूल आप देख रहे हैं ना मुझे कितनी तकलीफ है, मैं बहुत माल वाला हूं, घर पर बहुत बहुत ज्यादा माल है मेरे पास, लेकिन मालूम होता है ज्यादा मालदार होना कोई गुनाह की बात नहीं, अगर गुनाह की बात होती तो साहब ही नहीं कहते, अल्लाह के नबी साहब मेरे पास बहुत माल है यूं कहा, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है, मालदारी भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन माल का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए भाई, सही होना चाहिए, गुनाहों में नहीं, आने का रास्ता जाने का रास्ता सही होना चाहिए। तो साद इब्ने वक्कास रजी अल्लाह तआला फरमा अनजु माली, इस हदीस में बयान किया अनजु माली वला यरिसुनी इल्ला इब्नतुल्ली, अब मैं क्या करूं, एक ही मेरी बेटी है और मेरे पास माल बहुत है तो क्या करूं मैं जी, मैं सब माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं, ये एक बेटी है, उस बेटी का नाम था उम्मे हकम, उम्मे हकम सार इब्ने वक्कास रजी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के रसूल मेरा जितना भी माल है उसमें से टू थर्ड माल है अल्लाह के रास्ते में सदका कर सकता हूं, तो दो तिहाई मसलन किसी के पास 300 रुपये है तो उसके तीन हिस्से करो, तो एक तिहाई हिस्सा 100 रुपये होगा, दो तिहाई 200 होंगे, तो गए 200 में अल्लाह के रास्ते में, और 100 कितने किसके लिए, बेटी के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, नबी सासन पर कुर्बान जाओ, देखो कैसा मसला बताते हैं, और मेरे जो लाओ ना यार अल्लाह के रास्ते में लाओ, किसी को काम लग जाएगा, नहीं मसला देखो सामने वाले का कि ये सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, अगर चल्ला के रास्ते में है लेकिन बेटी का हक मारा जा रहा है, ये देखना पड़ता है, वैसे फतवा नहीं दे दिया जाता, अल्लाह के रास्ते में ही है ना, नहीं नहीं नहीं, जिस दीन को लेकर आए हैं, जिस मजहब को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, बिल्कुल इंसाफ वाला मजहब है, कोई जुल्म नहीं, किसी का हक इधर से उधर नहीं होने देता इस्लाम, हर एक का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नहीं, 200 अल्लाह के रास्ते में नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अनु ने फरमाया ओके आधा आधा पर शत्रु आ गया रसूलल्लाह, तो कम से कम आधा माल सदका कर दूं, वो आधा इनका और आधा मेरी बेटी का, पहले 300 में से 200 रुपये सदका करने की अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, फिर आधा आधा अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीसरे नंबर पर और कम कर दिया फसलुसु या रसूलल्लाह, तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में 1/3, वो 300 में से 100 रुपया दे दूं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया वसलुसु कसीर 1/3 ऑल्सो इज सो मच, ये भी ज्यादा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको दो तिहाई आधा माल अल्लाह के रास्ते में सदका करने की वसीयत से जो रोका था उसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका अंतदिर वरसत अग्निया, ए साहब आपके जितने भी वारिस हैं वो आपकी मौत के बाद मालदार हैं, लोगों से बेनियाज रहे, उनको लोगों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, उनको देकर जाओ, ऐसा नहीं सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया और बेचारे बच्चे दूसरे से भीख मांगे, नहीं उनको लोगों से भीख मांगे ये नहीं होना चाहिए, लोगों से खाने पीने का सवाल करें नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खैरखाही की अपनी उम्मत की। उलमा ने लिखा है अच्छी बात कि मरने वाला जब मर रहा हो और वो अपनी जमीन और जायदाद को या माल और दौलत को मस्जिद और मदरसे में वक्फ करना चाहता हो तो नहीं कर सकता, मसला सुनिए, मरने वाला जब मर रहा हो और मरते वक्त वसीयत करे कि मैं अपनी ये फुला जायदाद है ये मस्जिद में दे रहा हूं मदरसे में वक्फ कर रहा हूं, नहीं कर सकता, सिर्फ 1/3 उस प्रॉपर्टी में से, कितना भाई 1/3, 2/3 तो किसके पास जाएगी, वर्सा के पास जाएगी। हाँ ये बात जरूर याद रख लीजिए, इसीलिए हदीस में आता है एक मर्द और एक औरत
अपनी जिंदगी के 60 साल अल्लाह की इबादत करते रहे 60 ईयर्स तक, लेकिन मरने से पहले वसीयत इस तरह कर जाते हैं कि जितने वारिसीन है वो महरूम हो जाते हैं, तो अल्लाह उनकी 60 ईयर्स की इबादत को नहीं देखता, बल्कि उसके इस अमल पर उसको जन्नत में भेज देगा, इस अमल पर कि तूने वरसा को महरूम किया है। इसलिए एक बेटा नाफरमान है, कभी बाप के पास नहीं आता, तो बाप ये वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे माल में जिसको ना देना, अगर ची ये नाफरमान है फिर भी वो मालिक बनेगा वरसा का, विरास का। अगर उसके लिए मना किया है तो बाप को कब्र में अजाब होगा। ये विरास का मसला कुरान से साबित है, अल्लाह ने अपने नबी को नहीं कहा कि तुम समझाओ, नहीं, मैं डायरेक्टली अपनी उम्मत तुम्हारे बंदों को कहूंगा छोटे सिपारे में, और पूरा रुकू उठा रहा है। मिरास के मसले में हम किसी का थोड़ा सा भी माल ले लेंगे, किसी का हक अदा नहीं करेंगे, वो एक पाउंड हमारे लाखों पाउंड को तबाह बर्बाद कर देगा, और उस आदमी वो आदमी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मिरास का मसला है उस पर जो यहां पर बताया, नहीं नहीं अपने एक हिस्सा दो, वन तक साधु वक्का से कहा एक हिस्सा दो, बाकी है अपने वरसा के लिए, और अपने वरसा को ऐसे ही गरीब और फकीर छोड़कर न जाओ उनको दे। खैर अभी बात पूरी नहीं हुई, एक ही हदीस चल रही है, इंशाअल्लाह फिर आगे बयान करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको या अरहमुर राहिमीन, या जुल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या दयान या सुल्तान या कदीम अल एहसान। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ہمارا بیتنا قبول فرما، اللهم اس درس کو قبول فرما، درس حدیث کو قبول فرما، درس حدیث ریاض الصالحین کو قبول فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری زندگیوں کو اخلاص والی بنا دے، جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ اے اللہ اچھے اعمال کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہوئے لمبی عمر نصیب فرما۔ الہ العالمین پریشانی بیماری مشکلوں کو اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب یہاں پر جمع ہے، مائیں اور بہنیں مدرسے میں بیٹھی ہوئی سن رہی، الہ العالمین سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کا جمع ہونا قبول فرما۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کے صدقے اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ میں اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا، اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، قبائل سے حفاظت کرنا، اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے حفاظت کر لینا۔ الہ العالمین اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور جب موت آئے اے اللہ زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ ہو، تیری رضا ہو اور موت آ جائے، ایسی موت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب کرنا۔ اے اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دینا، قبر اور آخرت کی حساب پریشانیوں سے ہماری حفاظت کر لینا۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم۔